السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں اور آپ کی عافیت کی خواہش کے ساتھ ہم آج کا سیشن لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے وقت میں بہترین طریقے سے برکت دے. مجھے امید ہے کہ آپ علمی اعتبار سے ماشاءاللہ کافی امیر ہوتے جا رہے ہوں گے. تو آج کی جو دعا ہم ابھی سیکھنے لگے ہیں، اللہ کرے کہ اس کو سیکھنے کے بعد تو ہم اپنے آپ کو بلینیرین فیل کریں. آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کا نقطہ نظر اس طرح چینج ہوگا کہ لوگ مال کے پیچھے جس طرح کوشش کرتے ہیں، آپ انشاءاللہ تعالی علم کے پیچھے کوشش کریں گے. لوگ مال کو کامیابی سمجھتے ہیں، آپ علم کو کامیابی سمجھیں گے. اور اسی طرح وہ بس منی ورسز نالج. تو دنیا کی دولت جتنی بڑھتی ہے، انسان کے اپنے لیے اس کے پاس وقت کم سے کم رہتا ہے اور وہ انجوائے نہیں کرتا، بلکہ پھر دوسرے اس کے مال کو انجوائے کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو بہت اچھے اچھے گھروں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، گاڑیاں، نوکر چاکر، تو اکثر دوسرے ہی لوگ آ کے رہتے ہیں اور یہ ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اچھے جذبے سے کر رہے ہیں تو بہت اجر ہوگا، لیکن اگر صرف اس شوق کے ساتھ کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، تو پھر اللہ کو نیتوں کا تو پتہ ہی ہے نا. لیکن آپ جس طرح آپ لے رہے ہیں نا، جب آپ کے بہت سارا علم ہوگا، آپ امیجنیشن میں لائیں اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑے کہ علم بھر رہے، پانچ دعائیں سیکھ چکے ہیں، چھٹی آج سیکھنے لگے ہیں، تو پھر آپ کا دل کرے گا میں کس کو کھلاؤں، کس کو دوں. جیسے منی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کسی کو کھلائیں، اچھے کپڑے پہن لیں تو دل بنا لیں. جب لوگ اچھے کپڑے بناتے ہیں پھر کہتے ہیں کہاں جاؤں پہن کے نا، تو وہ ایک بندہ نہ چاہتے بھی ایک فلانٹ کرتا ہے، ایک اس کے اندر ایکسپوجر ہوتا ہے. تو میری دعا ہے کہ آپ کا علم اتنا بھر جائے کہ آپ کے اندر رہے ہی نہ، اور آپ جہاں سے گزریں، جہاں بھی جائیں، لوگوں کے ساتھ اپنا یہ علم بھی ڈالیں. اور علم کے ساتھ چاہیے کیا، یہ آج ہم سیکھنے لگے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. میں پھر اسی طرح ایک ایک لفظ بولنے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ لفظی ترجمہ بھی ان کا لکھیں. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا پناہ میں آتی ہوں تیری، من علم اس علم سے، لا ينفع جو نہ نفع دے، ومن اور سے یعنی ومن قلب اور اس دل سے، لا یخشا جو نہ ڈرے، ومن نفس اور اس نفس سے، لا تشبع جو سیر نہ ہو یعنی جو بھرے نہیں، ومن دعوت اور اس دعا سے، لا یستجاب لہا جو قبول نہ کی جائے. چار چیزوں سے آپ اپنے مالک کی پناہ میں آتے ہیں. ایک سٹریچ میں سنیں گے تو اس وقت آپ ساتھ ساتھ نمبرنگ کیجئے گا. اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. دل میں بولیے آمین. دوسری چیز، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس دل سے جو نہ ڈرے. بولیے آمین. تیسری چیز، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس نفس سے جو سیر نہ ہو یعنی گریڈ ہو اس کے اندر، لالچ ہو. آمین. اور پھر چوتھی چیز، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. کیا پتہ چلا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. آمین. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ہمیں اتنی خوبصورت دعائیں سکھا دیں کہ اس کے بعد تو ہمیں اور کسی چیز کو ایز اے دعا مانگنے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ایک تو چیز ملے گی، ایک سنت پہ عمل کا ثواب ملے گا. میں چند سیکنڈ کے لیے آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ اپنا نام خود ہی لکھیے، روم میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ کو یہ دعا پہلے آتی تھی؟ فرسٹ کوسچن. زبانی کی بات نہیں کر رہی، کبھی آپ نے یہ دعا سوچی پہلے سے آتی تھی؟ دوسرا سوال کیجئے، کیا کبھی میں نے خود یہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے؟ نہیں کی ہوگی، الا ماشاءاللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پہلے کوئی کورس کیا یا کہیں سے کوئی علم کی محفل میں بیٹھے تب لی. اور ایک اور سوال پوچھ لوں، ہم عموماً وظائف کرتے ہیں نا، ہمارے پاس وظیفوں کی بکس ہوتی ہیں، ہمارے پاس دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں، عموماً ہم کون سی دعائیں مانگتے ہیں؟ اور معذرت کے ساتھ مانگتے بھی نہیں، پڑھتے ہیں. بعض لوگ صبح اٹھ کے پہلی دعا سے لے کے آخری ساری پڑھ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں آج کی دعائیں پڑھ لی ہیں، اب یہ بھی کرنا ہے. हम माल की दुआएं मांगते, रिस्क की दुआएं मांगते, रंजो गम को दूर करने की दुआएं मांगते, बेटियों के रिश्तों की दुआएं करते, बेटों के लिए जॉब्स की दुआएं करते, कब हमने इल्म की दुआएं की थी? क्या यूनिक एक्सपीरियंस है ये! आपको इल्म की दुआएं मांगना सवीलुल जन्ना ने सिखा दिया, और अल्लाह करे कि ये दुआ कबूल हो जाए जो आज आपके मेरे सामने है। देखते हैं ज़रा एक एक चीज़ जिनसे हमने पनाह मांगी है। पहली चीज़, ऐसा इल्म जो नफ़ा ना दे। बिल्कुल इससे पीछे ही चले जाइए, दुआ नंबर 5, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी, ए अल्लाह जो तूने मुझे सिखाया इसके साथ मुझे नफ़ा दे, वअल्लिमनी मा यन्फ़उनी, और मुझे सिखा दे जो मुझे नफ़ा दे, वज़ीदनी इल्मा, और इल्म में इजाफ़ा कर। पिछली ही दुआ में सिर्फ और सिर्फ जो जोर था वो था कि नफ़े वाला इल्म दें, जो इल्म दिया हुआ है उससे नफ़ा उठाऊँ, फ़ायदा उठाऊँ, बेनिफिशियल हो, और आइंदा जो भी मेहनत करूँ वो बेकार चीज़ों का इल्म लेने में नहीं, कि कहाँ क्या बिकता है, कहाँ कितने का है, फ़लाँ से लगी नहीं, वहाँ कितने परसेंट डिस्काउंट है, ये भी तो इल्म ही है ना। चले मालूमात ही सही, चले अखबारें पढ़ना ही सही। आज हम कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे वो इल्म नहीं चाहिए जो मुझे नफ़ा ना दे। कैसे? देखिएगा, फिर दो एंगल हैं इसके भी। चूँकि लफ्ज़ इल्म है ना, नकिरा होता है, यानी कॉमन नाउन है, तो दुनिया का बेल, दुनिया की भी चीज़ें। फिर दूसरा भी लीजिएगा बाद में, दीन का इल्म। फिर इल्म लेने के भी दो मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। एक तो वो इल्म है ना जो आप ले रहे हैं यहाँ इस वक्त, माशाल्लाह, कह लीजिए कि ये कुरान का इल्म है, हिदायत का इल्म है, इसी तरह आपने बचपन से लेके मैट्रिक, FA, BA, BSc, मेडिकल, जहाँ तक भी आप गए वो भी इल्म थे। तो अब हम इसको दोनों तरह देखते हैं। इल्म की एक किस्म जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये बाज़ाब्ता इल्म होता है, डिसिप्लिन माहौल में बैठना। आप 3-4 साल के ही थे तो आपको स्कूल छोड़ दिया गया, और आप रोती भी गई और हंसती भी आई, और हर रोज़ सुबह उठ के ये जंग थी स्कूल नहीं जाना, लेकिन अब्बू कहते थे जाना। आपने वो जो सीखा उस इल्म ने आपको नफ़ा नहीं दिया अगर, तो आप कहते हैं कि अल्लाह मुझे अपने बच्चों को अब वो इल्म दिलाना है जो इनको नफ़ा दे। ख़ास तौर पे जो बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं उनके पास एक दो बहुत बिग इश्यूज़ हैं। ज़ाहिर है कि उनका तो कल्चर है, किसी हद तक तो लोगों का दीन भी है। आप में अपने आप को अगर इस्लाम की निगाह से देखते हैं तो हमें तो बहुत सारी चीज़ें बुरी लगेंगी, उनको नहीं लगती, क्योंकि उनके बच्चों ने बड़े होकर डांस भी करना है, वो डांस भी सिखाएंगे। म्यूज़िक तो उनकी रग है, वो म्यूज़िक का इल्म भी देंगे, और जहाँ ज़रा बहुत दीन सिखाएंगे तो वो अपना दीन देंगे, कहीं रामायण पढ़ाएंगे तो कहीं बाइबल पढ़ाएंगे, और सो ऑन। और हमारे बच्चे चूके जा रहे हैं तो वो भी लेंगे। कितना कॉमन सवाल है आज इस वक्त, कितनी दफ़ा इसका जवाब दे चुकी हूँ। तो दुनिया के अंदर गलत उलूम से अपने बच्चों को बचाइए, पहली बात तो इसमें ये समझ आती है। दूसरी बात, बाज़ाब्ता इल्म की दूसरी किस्म ये जो इस वक्त आपका है, दीन के नाम पे आप बैठे, इसमें भी दुआ कीजिएगा। आज इल्म का भी एक गर्रा है, बल्कि मैं सोचती हूँ कि अगर आज तक कोई सिलसिला नबूवत जारी होता तो हर दौर का एक बुत था ना, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में वाकई आइडल्स बने हुए थे, बुत थे, उनको तुड़वाया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब अरूज पे थी तो उनको मिरेकल्स जो दिए गए वो तिब से मुतल्लिक थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू सर पे चढ़ता था, लोगों के बहुत रिवाज था, तो जादू की किस्म के मौजज़े थे, यद बैज़ा और इसी तरह से असा सांप बन जाता था। अगर आज तक ये सिलसिला जारी होता है, यानी अल्लाह के नबी आज भेजे जाते, तो यकीन कीजिए आज का एक बहुत बड़ा बुत इल्म है, नॉलेज, स्टडीज़, बच्चे बड़े छोटे बड़े, कैरियर बिल्डिंग नॉलेज। आज हमारा तो स्टाइल ही बदल गया, मैं इस पे आपको और ख़ुद को डिसार्ट नहीं करती, लेकिन देखिए कि कम से कम 16 से 18 साल लगते हैं किसी को BA और मास्टर्स तक पहुंचने में, एक ही चीज़ बार बार बार। 18 साल तक आप एक ऐसा इल्म लेते हैं, पहले हल्का हल्का फिर भारी भारी, और ये कुरान का कोर्स कितना होता है, नौरानी कायदा कितने दिनों में पूरा हुआ, मौलवी साहब ने कितने दिन में सिखा दिया। तो ये देखिए कि आज के दौर का जो एक बहुत बड़ा बुत है ना, ये मटीरियलिस्टिक अप्रोच और मादा हासिल करने के लिए लेने वाला इल्म है। तो हम कहते हैं कि अल्लाह अब हम दीन पे आ गए, जो ये वक्त है ना इसमें कुछ ना जाए, इसमें कोई कमी ना करना। क्यों? इसलिए कि जब हम इसको ले, अगर दुनियावी उलूम आप खुद भी जो अभी तक ले चुकी हैं, उसमें और अपने दीनी सफ़र में एक तकाबुल करें, तो आप तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाएंगी ना, कि अल्लाह ताला ऐसा ना हो कि अब इस थोड़े से वक्त में से भी मैं चीज़ों को ले लूँ। चलिए, ये तो हो गया वो इल्म जिसको आप बाज़ाब्ता इल्म कह रहे हैं, पहले दीन का फिर दुनिया का, या दुनिया और दीन का। एक और इल्म भी हम सारा वक्त चाहते हैं, किसके घर क्या हुआ, वहाँ क्या हो रहा है, मामू की बेटी घर क्यों है, फूफो के बेटे की तलाक तो नहीं हुई। ये बेकार किस्म की मालूमात को भी हम इल्म कहते हैं। फिर कहते हैं मुझे बताया नहीं, और क्या कहते हैं, सुना तुमने, अरे क्या हुआ। और इल्म की किस्में खबरें, ये भी इल्म है, उधर ये हुआ, इधर ये हुआ, उसने हड़ताल कर दी, वो ये बंद हो गया, ये हो गया। अल्लाह के नबी की एक हदीस याद रख लें, आप फोकस्ड होंगे, आप बेहतरीन स्टूडेंट बनेंगे। और वो क्या है कि मुसलमान कौन होता है, मिन हुस्नुल इस्लामी तर्कुहु मा ला यानी। आदमी के इस्लाम का हुसन ये है कि वो हर बेकार चीज़ को छोड़ दे। तो आप कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफऊ, तो गोया कि आपने अल्लाह का, मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए जो मुझे नफ़ा ना दे। कहाँ सेल लग गई, किधर कूपन है, किधर क्या है, बाय वन गेट वन, और तरकीबें। एक और इल्म ला यनफऊ ले लीजिए, पूरे पूरे चैनल्स बन गए, फूड चैनल, रेसिपीज चैनल, फलां का किचन, फलां का किचन। क्यों भाई, हम पेट के पुजारी हैं। सब चैनल्स बंद जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी के लिए अच्छी होंगी, आपके लिए क्यों हुई। आप कहेंगे क्या बुरी बात है खाना पकाना, कोई बुरी बात नहीं, इबादत है। लेकिन जब दिल दिमाग हर वक्त उन चीज़ों में, और उन्होंने ज़ाहिर है कि उन चीज़ों को हाईलाइट करना है, तो फिर वो चीज़ें डलेंगी जो बाज़ार से आएंगी, वो बाज़ार में आम नहीं मिलेंगी, वो बड़े बड़े मॉल्स में ढूंढते हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, यहाँ तो हर चीज़ यहाँ के हिसाब से मिलेगी ना। तो वही खाना जो घर का सीधा साधा खाना 200-300 में बनता था, वो अब 2-4 हज़ार में बनने लगा, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स इंपोर्टेड थे। तो याद रखिए, खाना पीना मकसद नहीं, बात यह है कि मुझे बस उतना बताइए जो मेरे नफ़े का है, क्योंकि मेरा ये साल बड़ा कीमती है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा सारे ग्रुप्स छोड़ दीजिए जो आपको सिर्फ इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते थे। चलिए, नाराज़ हो गए हैं तो मैं इस पे छोड़ देती हूँ बात, क्योंकि हम बड़ा माइंड करते हैं जब ख़ास तौर पे हमें खाने पीने पे टोका जाए। अभी मैंने कपड़ों की तो बात ही नहीं की, लेकिन बस हर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से अल्लाह मुझे बचा जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दे। विंडो वॉचिंग है मिन इल्म ला यनफऊ। आपको इल्म हो भी गया, फलां स्टोर में ये बिक रहा है, उधर ये बिक रहा है, आपका क्या बना, ले तो सकते नहीं, लेना भी नहीं, बस विंडो वॉचिंग। दूसरी चीज़ देखिए, मिन कल्बिल ला यख्शा, वो दिल जो ना डरे। दिल ना डरे तो लफ्ज़ खशा को देखिएगा, आजजी और झुकने को कहते हैं। कुरान में आप बहुत जगह इसकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगी, इल्लल खाशेइन, अभी सूरत बकरा में ही आपके सामने आएगा। तो खुशू कहते हैं आजजी को, झुक जाने को। क्या पता चला कि मुझे वो दिल नहीं चाहिए जो आजिज़ ना हो, जो झुक ना जाए। किसी ने एक वीडियो भेजी, चूँकि आदमी भी था बीच में और एक कैमल है, तो मैंने शेयर नहीं किया आगे, वरना उसका मैसेज कितना प्यारा था। अरब वीडियो थी जिसमें दिखाया ये जा रहा था कि अपनी उठनी के साथ एक सहरा में बंदा खड़ा है, अरबी में सारी बात कर रहा है, और उसमें बता रहा है कि ये बिल्कुल सीधी गर्दन थी उसकी, तो कहने लगा कि अभी मैं इसके ऊपर जब अल्लाह की बातें और अल्लाह की तस्बीहात करूँगा तो आप देखिएगा कि इसके अंदर कैसे खुशू आता है। तो वाकई फिर ये हुआ, उसने इतनी प्यारी अरबी ज़ुबान में बात शुरू की, अल्लाह वो जिसने कायनात को बनाया। यकीन करें, अनबिलीवेबल चीज़ थी। ज़ाहिर को जानवर को सिखा तो नहीं सकता, और वो क्या थी कि वो उस ऊँटनी की गर्दन झुकती गई, झुकती गई, और जब वो बातें करता गया तो आखिर में बिल्कुल उसका सर ज़मीन पे लगा हुआ था। तो मुझे हमारे अपने ही साथियों में से किसी ने भेजी, तो मैंने कहा दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अ मुस्लिम। मैंने खुद कई जगह ये जुमला बोला, शायद आपके भी यहाँ कहीं आ जाएगा, कि मुस्लिम कौन है, वो ऊँट जो अपने मालिक के आगे सर झुका दे, मालिक कहे सर उठा लो तो वो उठा ले, और इसी तरह। तो मैंने कहा काश हम भी इस ऊँटनी की तरह होते। बात यह है कि जितना ज़्यादा आपके मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत खशियत होगी, उतने अच्छे काम करेंगे। चूँकि आपकी इल्म की बातें हैं, तो हमने इल्म पे तो बात कर ली, लेकिन बाकी तीन चीज़ों पे भी इशारतन बात कर लीजिए, कि वो दिल जो ना डरे, यही तो बनाने बैठे हैं। कोई आपसे कल कभी पूछे ना कि आप क्या कर रही हैं, आप इसमें क्या सीखेंगी, तो आप कहिएगा कि मैं इसमें अपने दिल का इलाज कराऊंगी, अपने दिल को खूबसूरत कराने बैठती हूँ। और फिर तीसरी चीज़, नफ्स ला तशबा, ऐसा नफ्स जो भरे ही ना, शबा सैर होना। जानवर जब खाना खाता है ना, तो उसकी वो जो कूखें वो भर जाती हैं, फूल जाता है उसका पेट। तो ला तशबा क्या है कि मेरा पेट ही नहीं भर रहा, और अल्लाह माफ़ करे, खाते हुए भी कुछ लोगों का यही अंदाज़ होता है, और दुनिया लेते हुए तो भी यही अंदाज़ होता है। कपड़े लेते हुए तो हम खवातीन का भी शायद यही मामला हो कि है ही कुछ नहीं पहनने को, पहनूं क्या, तो अल्लाह मुझे ऐसा नफ्स नहीं चाहिए। और इसकी डिटेल्स आप पढ़ेंगे 13वें पारे की पहली आयत में इंशाल्लाह, यानी अल्लाह सहर उन्हें अल्लाह नफ्स दे कनात हो, मेरे दिल में खुशी हो। और फिर आखिरी चीज़ देखिए, में दावत अल्लाह इस्तजाबुलहा, अल्लाह मेरी दुआएं ऐसी ना हो जो कबूल ना हो। आप देखिए कि जिस दरख्वास्त को मंजूर नहीं होना वो डालने की क्या ज़रूरत है। तो हमने इस मुख्तसर सी दुआ में ये सीख लिया कि अल्लाह मुझे नफ़ा मंद इल्म चाहिए, बेकार इल्म नहीं, डरने वाला दिल चाहिए, अकड़ने वाला और आगे से हुज्जतें करने वाला दिल नहीं चाहिए, और ऐसा नफ्स चाहिए जो थोड़े पे राज़ी हो जाए, और वो दुआएं चाहिए कि अभी हाथ भी ना उठे और बात ऊपर पहुंच जाए। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तजाबु दावत बनाए। आप सब के लिए मेरे दिल की गहराइयों से ये दुआएं हैं कि अभी तो आपने मांगी है ना अपने लिए दुआ, मैंने अपने लिए मांगी है, अब मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ये सारे सबीलुल जन्ना वाले साथी, इनको बेकार किस्म के उलूम से बचा, इनके दिलों को खशियत अता कर दे, और इनके नफ्स को सैर कर दे, और इनकी हर दुआ कबूल फरमा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब ज़रा सा इसको हम टीचर के साथ पढ़ते हैं, इस वक्त पढ़ते वक्त खशियत हो, जो कुछ सुना है इसको महसूस करते हुए सुनिए, और सिर्फ पढ़ना नहीं है पहाड़ों की तरह बल्कि दोहराना है, और आप खुद सरापे दुआ बन जाएं। शुरू कीजिए।
चले मिल के इंशाल्लाह इन दुआओं को दोबारा मांगते हैं।
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिल ला यन्फा व मिन क़ल्बिल ला यख्शा व मिन नफ्सिल ला तश्बा व मिन दावतिल ला युस्तजा।